श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 8 अगस्त 1990 प्रातः 8:30 बजे बीकानेर।
परम ब्रह्मराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज महो प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रय गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतभुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं दाय देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बंसी विभूषितकरान्नवनीतदाभात्पीताम्बराधनुनगम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ॐ नमोऽस्तु परमात्मने नमस्ति गोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुचरणकमले नारायण 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 नारायण। मनुष्य शरीर की शास्त्र में बहुत बड़ी भारी महिमा लिखी है। दुर्लभो मनुष्य भागवत में आता है लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवान् दुर्लभ सुदुर्लभम लिखा। इसमें एक बात बताओ आप ध्यान दे और सुने विशेष ध्यान दें। शरीर के निर्वाह की व्यवस्था पहले से है। जैसे आप हम बहन भाई अपनी माँ के यहाँ जन्म लेते हैं तो हमारे बिना उद्योग किए दूध आ जाता है, हमारे लिए दूध तैयार हो जाता है, हमें उद्योग नहीं करना पड़ता, हमें पुरुषार्थ करना नहीं पड़ता। तो जैसे दूध का प्रबंध है ऐसे भगवान के यहां हमारे शरीर के निर्वाह प्रबंध कर रखा। शरीर के लिए निर्वाह हो जाए अन्न जल वस्त्र आदि, ऐसा परमात्मा की तरफ से प्रबंध है। वो स्वामी जी महाराज ने कहा है प्रारब्ध पहले रचा। जैसे जन्म से पहले दूध तैयार होता है ऐसे प्रारब्ध पहले रचा, पीछे रचा शरीर। शरीर रचना पीछे हुई, शरीर के निर्वाह का प्रबंध पहले हो जाए जिससे ये जी सके। तो प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, तुलसी चिंता क्यों करे भजने से हुई, तू चिंता क्यों करे, भगवान का भजन कर रहे। ये चिंता रोटी की चिंता है, कपड़े की चिंता है, घर की चिंता है, खाने पीने की चिंता है, ये तो चीत निर्वाह मात्र की चिंता मत करो। परंतु इसमें भी आप जो नया नया काम कर लेते हैं उसका प्रबंध नहीं है भगवान के यहाँ। आप चाय पियो, अफीम लो, भांग खाओ, चरस पियो, सुल्फा पियो, ये पान सुपारी आदि ये भी प्रारब्ध का नहीं है, ये नया है नया। तो नई आफत ये क्यों करो, नया तो भगवान का भजन करो जिसके लिए जन्म हुआ है। निर्वाह मात्र का तो प्रबंध स्वतः है, परंतु ये नशा पता करने का प्रबंध भगवान के यहां नहीं है, ये स्वयं करते हो, पैसे बर्बाद करते हो और अपना जीवन बर्बाद करते हो। मृत्यु समय में एक भी श्वास अगर लेना चाहो तो नहीं मिलता, वे श्वास आप खेल में तमाशों में खाने में पीने में चाय में कोकड़ में शराब में तंबाकू पीने में बीड़ी सिगरेट पीने में पान खाने में खराब कर देते हो, कितना बड़ा नुकसान होता है। जीवन का आधार है समय, आप अपने बहादुरी से नहीं जी रहे हैं, अपनी होशियारी से नहीं जी रहे हैं, अपनी बुद्धिमानी से नहीं जी रहे हैं, उम्र के आधार पर जी रहे हैं। वे उम्र के हैं श्वास, इसमें जितना समय आप खर्च करोगे वो खास आप जीने के लिए जो समय है उसमें से खर्च होगा। कितने भी लिखना बात ध्यान दें थोड़ा सा। संपूर्ण जीवों को जीना पसंद है, जीना चाहते हैं, और मानव शरीर इतना बड़ा महत्व इसका है, देवताओं के लिए दुर्लभ बताया है। सुरह दुर्लभ सद ग्रंथ ने गावा, वो सामने लिखा है, बड़े भाग्य मान तनु पावा। सुर दुर्लभ देवताओं के लिए दुर्लभ है वो मनुष्य शरीर है। उस मनुष्य शरीर का समय देवताओं के लिए दुर्लभ है वो मिला है। उस समय को नशा पतों में खराब कर देना, बर्बाद कर देना कितना बड़ा अपराध है। भगवान ने जिन जीवों को देखा कि ये अपना कल्याण कर सकते हैं उनको मनुष्य बनाया, नींद में नहीं बनाया है। आज नींद में भगवान ने बना दिया ऐसी बात नहीं है, विश्वास किया है कि ये जीव अगर इनको मनुष्य दे दिया जाए तो ये अपना कल्याण करेंगे। ऐसा विश्वास करके मनुष्य शरीर दिया तो मनुष्य शरीर पा करके भगवान का भजन नहीं करते, भगवान के साथ विश्वासघात करते। भगवान ने विश्वास किया कि मनुष्य शरीर मिल जाए तो अपना कल्याण कर रही। ये कल्याण करने का एक ही उपाय है मनुष्य शरीर में ही, और शरीरों में नहीं है। देवताओं के शरीरों में भोग अधिक मिलेंगे, उनके शरीर दिव्य होते हैं, हम लोगों के शरीर से उनको दुर्गंध आती है। जैसे मेले में लथपथ हुआ सूअर अपने पास में आ जाए तो कि उसको पसंद करेंगे, वहां दुर्गंध आएगी। ऐसे देवताओं को अपने शरीर से दुर्गंध आती है। ऐसा शरीर है ये बढ़िया नहीं है। और देखा जाए विचार करके तो मल मूत्र बनाने की मशीन है ये, बढ़िया बढ़िया अन्न दे दो और उसे भ्रष्टा बना लो, गंगा जी का जमुना जी का जल दे दो और प्रसाद बना लो, टट्टी प्रसाद बना की मशीन है। आप विचार कर दे वो एकदम सच्ची बात है। ऐसा ये शरीर है तो इसमें कीमती क्या है कि मन शरीर का समय कीमती क्यों है कि ये सदा के लिए मुक्त हो सकता है, जन्म मन से रहित हो सकता है, दुखों का अत्यंत अभाव हो सकता है, परम आनंद की प्राप्ति हो सकती है, जिससे बढ़कर कोई आनंद नहीं ऐसे आनंद की प्राप्ति हो जाए, दुख कभी नहीं हो कभी भी कभी भी। स्वर्गे भी नोब जायते प्रलय न व्यसंति, प्रलय में सब लोगों में खलबली मच जाती है, सब लोगों का नाश हो जाता है, उसमें भी इस ज्ञान का आश्रय लेने वाले न व्यसंति, उनको व्यसन नहीं पहुंचती, महाप्रलय में भी उनको तकलीफ नहीं पहुंचती, और महासर्ग में भी स्वर्गे भी नोब जायते पैदा होने का इनको दुख भोगना नहीं पड़ता। ऐसा मानव से जिसमें ऐसा ज्ञान प्राप्त कर सके, इस ज्ञान के समान नहीं ज्ञान पवित्र, इसके समान कोई पवित्र चीज नहीं, वो जिस शरीर से प्राप्त हो सके उस शरीर को प्राप्त करके खेल तमाशों में, सिनेमा देखने में, नाटक देखने में, वीडियो देखने में, और ये नशा पता करने में, अफीम सेवन करते हैं, भांग सेवन करते हैं, तर्स सेवन करते हैं, चाय पीते हैं, कितना नुकसान होता है। चाय पीने वालों की आंतें खराब हो जाती है, दवाई नहीं लगती उनको, आंतें इतनी खराब हो जाती है, जल जाती है वे दांतों में, जहाँ दवाई गुण से वह गुण नहीं करेगी आंतें जल जाएगी। अब ये और मदिरा से तो बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है, अत्यधिक भीतर से जल जाता है। मदिरा से केवल आंतें ही नहीं जलती है, धार्मिक अंकुर नष्ट हो जाते हैं। भजन दमन करना, धर्म का पालन करना, इसके भीतर संस्कार है, वे संस्कार है वे जल जाते हैं, उसको धर्म की बात है। मध्य पे तत्व चिंता राजा मित्र के सुनाएगी। मध्य पीने वाला कभी तत्व का चिंतन कर सकता है? नहीं कर सकता। धर्मात्मा नहीं बन सकता। वह महापातक है। चार महापातक बताए, उसमें मदिरा पानी महापातक है। महापातक इसलिए है कि अभी पिए जिसके पाप तो लगेगा पर धर्म के परमाणु नष्ट हो जाएंगे। धर्म जिसे धर्म के संस्कार है भीतर वे नष्ट हो जाएंगे। अंकुर भूज दिया जाए, ये दाने होते हैं ना, गेहूं है, बाजरा है, जौ है, चना है और घास फूस के जितने बीज है, ये बीज उगते हैं कब? वो भूज न दिया जाए। अगर भूज दिया जाए तो चने खाने में काम आवेंगे पर ऊन के नहीं। धानी बढ़ा नहीं जाएगी, वो ज्वार और वो मक्का उगेगा नहीं। जिनको चीजों भाना लो भद्रता कसदा धाना प्राय भेजा है नहीं सीधे। क्वास बना लो, उबाल लो, फिर बूझेगा नहीं, उगेगा नहीं, अंकुर नहीं देगा। भूज लो, वो अंकुर नहीं देगा। ऐसे ही मदिरा आदि नशा करने वालों के धार्मिक परमाणु नष्ट हो जाते हैं। धर्म का वहां अंकुर पैदा नहीं होगा। धर्म के अनुष्ठान करने का विचार उनका नष्ट हो जाता है। नशा काढ़ ली भी नशा नशा किया सब नाश, नशा ना किया नरक में अड़ी नशा में आस, नाड़ियां निकल जाती है, कमजोर हो जाते हैं नशा करते करते। और नशा को बीच में लगे हो, ये चाय है, कोकन है, दीख है, ठीक ठीक दीख है, मैला पानी पीते हो, दूध जैसा शुद्ध पदार्थ जिसमें घी आता है, मृत्युलोक का अमृत है, अमृत अप्सराओं का काम पड़ा इतिहास में आया है, तो अप्सराएं अमृत खाती है, देव देव लोक की है, तो यहाँ क्या यहाँ घी खावेगी? घी के सिवाय उनको कोई पदार्थ खाता नहीं। ऐसा अमृत घी जिस दूध से पैदा हो, उस दूध में चाय डाल करके मैला पानी कर देते हो और वो पियो, राजी होते हो। मदिरा को काला पानी कहते हैं, पागल पानी है पागलों का, वो पीते हो। कितना भारी भर अनर्थ कर रहे हो, चिलम तमाकू भुक्का आदि से तमाकू पीते हो, चरस पीते हो, कोकन खाते हो, इधर चाय पीते हो, नशीली चीजें। और लोग चाय में भी अफीम डाल देते हैं, अफीम के डोडा होते हैं, अफीम डोडा देखेंगे ना, डोडा होते हैं जिसमें से ये खसखस निकलती है, तो वे डोडा होते हैं, वे डोडा डाल दिया जाए चाय में तो नशा अच्छा आता है, तो वो डालते हैं और कहेंगे वो डोडा नहीं मिले तो अफीम डाल दे थोड़ा सा जिसमें चाय में वो नशा ज्यादा हो जाए। लोग देखेंगे तो बड़ी अच्छी चीज है, यूं करके अफीम खड़े ले जाते हैं, अमल खाते हैं अमल, अफीम से। आजकल अफीम अफीम से आदमी इधर कम है, भाटी पे मचाते जैसे मेरा, तो वो अफीम खाते हैं। ऐसे चाय में अफीम मिला दे, चाय में भी चीज मिला करके ऐसी चाय बनाते हैं जिनमें लोग राजी हो जाए, इसको बड़ा नशा अच्छा नशा गया है। आपको क्या बतावे, रसगुल्ला बड़ी अच्छी चीज है, वो भी बंगालियों के यहाँ जाके कलकत्ते में बंगाली के यहाँ लेते हैं। कारण क्या है, उसमें थोड़ा अंडा दे देते हैं, अंडों का रस दे देते हैं, वो कहे अच्छा होता है स्वादी, वहाँ बढ़िया होता है रसगुल्ला। पंजाबी बंगालियों के दुकानों का बढ़िया होता है, क्या बढ़िया होता है, उसमें रस दे दिया अंडे का, अंडा करा दिया, ऐसे खाते हो। अंडा महान भ्रूण हत्या गर्भपात करेगा, महान पाप लिखा है, हत्या हत्या आदमी होता है। मैं तो जहाँ जाता हूँ कह देता हूँ कि भाई जिस घर में गर्भपात किया हो, किसी एक स्त्री ने गर्भपात किया हो, उस घर की भिक्षा हमारे को मत देना, महान हत्यारा वो घर है, उसका घर महान पतन करने वाला है, हिंसा घर है, उस घर का अन्न मत देना हमारे को। हम तो जानते नहीं, तुम जानते हो, एक स्त्री ने भी गर्भपात किया है तो उस घर का भिक्षा हमारे को मत देना, कृपा करना। आप तो नरकों में जाते हो, हमारे को घसीट वहां ले जाते हो, ऐसी हत्या करते हो, हमारी भी हत्या करते हो, पाप लगेगा। अब वो भ्रूण हत्या अंडा है, वो भ्रूण है, वो गर्भ है, अंडे में पैदा होते हैं, फिर अंडा में पक्षी और आदि निकलता है, उन अंडा को खा जाते हो, मुर्गी आदि का कितनी हत्या है। कहते हैं कि बिना हत्या का होता है, बिना हत्या तो है क्या, चीज क्या है? ये रजबीरी से बना है, पेशाब से बना हुआ महान अशुद्ध चीज कितनी अपवित्र चीज है। रजवीर स्त्री पुरुष का पेशाब है, उनसे बनने वाली चीज कितनी अशुद्ध है, कितनी अपवित्र है। उस चीज को खाते हो राजी हो जाते हो, उसमें कितना नुकसान कर रहे हो, कितनी अशुद्ध चीज खा रहे हो। भगवान की बात होती है, मेरे को आश्चर्य आता है कि मैं बातें शास्त्रों की अच्छी अच्छी सुनाता हूँ, परंतु तो लोग परवाह ही नहीं करते। कारण क्या है कि भीतर अंतःकरण खराब कर दिया, अपने सुनने में बीच में अंतःकरण भीतर से मैला कर दिया, इन बातों को समझ नहीं सकते। महान मैला कर दिया, भाव मैले कर दिए, भीतर की सब नशा और सब जितना ढसा है उनको महान मैला कर दिया। अच्छी बातें कैसे सीख से झेले नहीं कागज पापो, कारण कागज में पारा रह जाएगा, पारे को रख लो कागज में, रहेगा नहीं महाराज। इस तरह से ये बातें आपके पसती नहीं, भीतर में बैठती नहीं, इतनी बात सुनने पर भी आदमी का जीवन न बदल जाए। मेरी दृष्टि में शास्त्रों में जो अच्छी अच्छी है उनमें सुगमता से कल्याण हो जाए, बहुत जल्दी उद्धार हो जाए, ऐसी बातों की खोज मेरे रही है और है भी। अब भी मैं खोजता हूं कि जल्दी कैसे कल्याण हो, परंतु सुनते ही नहीं, इसके बाद विचार ही नहीं करते। अरे थोड़ा सा तो सोचो, इन बातों के सुनने मात्र का असर पड़ेगा, अच्छा बड़ा सुंदर असर पड़ेगा, कल्याण होगा, उद्धार होगा, आपके भाव निर्मल हो जाएंगे, एकदम शुद्ध व्यवहार आपका निर्मल हो जाएगा। ठीक सच्चे हृदय से जो अंतकरण कर सत्संग करते हैं उनका व्यवहार अच्छा, क्यों भीतर के भाव भी निर्मल हो जाते हैं, मन निर्मल हो जाए, बुद्धि निर्मल हो जाए, आपका मैं पर निर्मल हो जाए, सब इनका मैल दूर हो जाए, बड़े भाग्य पाई है सत्संग। बिना प्रयास हुए भव भंगा, बिना प्रयास किए बिना उद्योग किए आपसे आप कल्याण हो जाए। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में व्याख्यान का काम पड़ा है तो मैंने ये कहा है कि तुम पत्थर हो, पर पत्थर हो गंगा जी के, गंगा जी में लुढ़कते लुढ़कते पत्थर गोल हो जाते, बड़े सुहावने गंगा जी की छोड़ लगती है, उन देखो तो वो रंग रंगीले पत्थर गोल गोल साफ साफ सुंदर। क्या हुआ उन्होंने, उन्होंने कोई मेहनत की है, परंतु उस प्रवाह में पड़े हुए हैं, प्रवाह में लुढ़ते 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 वे पत्थर गोल हो गए। और गंगा जी का जो रेता होता है ना, वो पत्थरों के कणों से बना हुआ रेता है, मतलब बड़ा करड़ा करड़ा होता है वो रेता, अपने बालू इतनी करड़ी नहीं होती, रेता दूसरा करड़ा नहीं, वहां करड़ा है, क्या पत्थरों से बना है, पत्थर कैसे कि गंगा जी के प्रभाव में लुढ़कते हैं। ये हमारे देखी हुई बात है, पहले गंगा जी चढ़ती है फिर नीचे उतर जाती है, तो उनके पास में बालू का ही महाराज धोरा प्रसन्न जाता, जैसे ये धोरा होते हैं हवा से, इस तरह से बालू से धुरे हो जाते हैं। उन धुरों सुने के मेरे काम पड़ा है, गंगा जी के कहन किनारे पर उसमें थोड़ा सा बालू ऐसे करके और उसमें सोया हूं मैं, मेरे को पता है इस बात का, मैं जानता हूं ठंडी जाती है बहुत अच्छी गंगा जी किनारे, नींद आती है उसमें थोड़ी नींद में तृप्ति हो जाती है, ये मैंने देखा है। एक बार चौगान पैदान मैदान में सो करके आप नींद लो, एक आप मकान के भीतर नींद लो, भीतर नींद ज्यादा आवेगी, मैदान में थोड़ी आवेगी, अरे गंगा जी रेते में थोड़ी आवेगी, थोड़ी नींद से तृप्ति हो जाती, मस्त हो जाते एकदम। तो वहां गंगा जी एक किनारे मैंने सोए हुए के आप ही ख्याल जाता, कानों में सुनते हैं तो कल 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 के ध्वनि होती है, एक कंकर लुढ़कते हैं उसकी सावधानी ध्वनि होती है, आप देखना जाने जहाँ गंगा जी किनारे है स्वर्ग आश्रम में, वहां जाकर आप कान लगा कर देखो तो उन्हें पत्थर भी लुढ़क रहे हैं, तो पत्थर में खड़खड़ खड़खड़ की ध्वनि, पत्थरों की ध्वनि होती है, गंगा जी की ध्वनि होती है, उनमें शब्द आता है, और मैं तो सुनता ही उनके किनारे जो मुझे सुनी रही आपसे, आप बरसों देखा है मैंने, देखा है ऐसा मानो कानों से ठीक तरह से इनका अनुभव किया है, देखना आंखों से देखना नहीं कानों से देखा है। शब्द होता है उसमें, तो उस पत्थर के डुडुकते डुडुकते पत्थर गोल हो जाते हैं। ऐसे सत्संग करते करते मनुष्य इतने विलक्षण हो जाते हैं, बड़े बड़े पंडित इस बात को नहीं कह सकते, सत्संग ही कह सकते हैं। सत्संगों को उतना संग्रह हो जाता है, आप स्वतः स्वतः सुनते सुनते बहुत विलक्षण विलक्षण अनुभव हो जाते हैं। परंतु नशा पता करके वे कहाँ संग्रह हुए अच्छी बातें, तो उनको बाल देते हैं, रहने की रखने की जगह वो थोड़े वो पात्र है, उन पात्रों को कुपात्र बना देते हो, आप कितना नुकसान कर रहे हो। तो कृपा करो कृपानाथ, अन्न जल वस्त्र निर्वाह मात्र का है, वो शारीरंग केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति कीलबिषम, केवल निर्वाह मात्र का शारीरिक काम करता है, उसे पाप नहीं होता। कुर्वन्नाप्नोति कीलबिषम दो बार आया गीता में, स्वभाव नियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति कीलबिषम, स्वभाव के ज्ञान अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इनके जो स्वभाव में क्षात्र कर्म स्वभाव है, जो वैश्य कर्म स्वभाव है, जो ये तुम कर शूद्र से अभी स्वभाव जब स्वाभाविक कर्म है, उन स्वाभाविक कर्म करते हुए पाप नहीं लगता। अर्थ क्या हुआ, कृषि गोरक्ष वाणिज्य कृषि करो खेती करोगे तो खेती बिना पाप नहीं होती, हिंसा होने से होती है, परंतु वैश्य के लिए उसका पाप नहीं लगेगा। वो स्वभाव नियत कर्म है, स्वभाव के अनुसार शास्त्र से नियत कर दिया ये काम करो, तो वो काम करे केवल निर्वाह मात्र के लिए और दुनिया के हित के लिए, तो उसे पाप नहीं लगता। नापनोति किल विषम, इसका अर्थ होता है पाप होता था है, पाप लगता नहीं। ऐसे शरीर निर्वाह मात्र के लिए अन्न जल ग्रहण करो, स्वाद के लिए नहीं। कपड़ा पहनो केवल शीत घाम निवारण के लिए, शोखिनी के लिए नहीं, स्वाद शोखिनी करने के लिए शरीर नहीं है। यही तनु कर फल विषय न भाई, इस शरीर का फल विषय भोग नहीं है। स्वर्ग और स्वर्ग स्वर्ग के लिए उद्योग किया जाए तो उसके लिए भी मानव शरीर नहीं है। अंत दुखदायी अंत में क्षीरे पुण्य मृत्युलोकम विशंति गता गतं काम कामाल बंदे, आने जाने के भोगते ही रहते हैं। तो यहाँ जाकर ऊंचे चढ़ करके और गिरते हैं, फिर ये शरीर मिला है, ऊंचा दर्जा दिया है भगवान ने, दुर्लभ दुर्लभ मनुष्य दिया है, उस शरीर का ऐसे नाश करो चाय पी पी करके। ये माइयां छोटे छोटे बच्चों को चाय पिला देती है, अफीम जाना शुरू करते हैं, जैसे ये टट्टी नहीं भरे और वो पढ़ा रहे सारा तुम चा करे नहीं, हमारा तकलीफ न हो, थोड़ा सा अफीम दे दे, कितना काम कर दे। बाल्य अवस्था में उनको देना चाहिए सोना, देना चाहिए स्वर्ण, बढ़िया चीज दे करके उनका शरीर अच्छा बना दे, उम्र भर अच्छा रहे। जिसके बालक अवस्था में ये चीजें मिली है, मक्खन मिला है, घी मिला है, दूध मिला है, उनके शरीर उम्र भर अच्छे रहते हैं। बचपन है वो तो नींव है, उसमें ही अफीम देते थे, उसमें भी चाय पिलाते थे, छोटे छोटे छोरे चाय पीने लग जाए, दूध नहीं पी सकते, दूध अच्छा नहीं लगेगा, चाय अच्छी लगेगी, दूध में मलाई आई मलाई आएगी, कैसा आदमी है। हम तो बचपन में हमें याद है दूध पीते थे तो दूध में घी नहीं डाले तो उसमें तारा नहीं हो तो अंधा दूध है, तुम्हें रात और तारा नहीं हो तो अंधेरी रात है, ऐसे तारा दूध यही नहीं, इसमें क्या हुआ तो घी डाले तो अब ठीक है, ये प्रकाश हो गया हमारे पिया हुआ है। हम कहते कि भाई दूध में थोड़ा घी तो डाल दो, आज के सुरंग दे दो घी डाल करके, मुश्किल हो जाए खाना पीना, मुश्किल हो जाए। तो ऐसे ही आजकल की बुद्धि है आदमियों की, ऐसा ही शरीर है खराब, और उसमें फिर उसमें चाय पाल रहा है, मैलापन कर दे उसको, क्यों दूध को मैला करो, क्यों दूध का नाश करो, क्यों अपने शरीर का नाश करो, क्यों बाल बच्चों का नाश करो। ए मामा पिएगी छोरा छोरी को पिलाएगी, उनके व्यसन बन जाएगा बाल्य अवस्था से, फिर छुड़ाओ छूटेगा नहीं। यह नवे भागने लग्न संस्कारो नान्यथा भवेत, कोड़ा बर्तन लेकर के घड़ा भरकर पानी से और उसको कोयले से लिख दो, पक्का हो जाएगा, और पक जाने पर स्याही उस पर लिखा था नहीं बैठेगा उतर जाएगा। ऐसे बचपन के संस्कार उनके स्थायी हो जाते हैं, उसमें नशा करा दे दो छोरों को, क्यों जीवन बिगाड़ते हो माताओं, आप माँ हो, पोषण करने वाली हो, जन्म देने वाली हो, वो होकर के उन बच्चों को ऐसी आदत खराब कर देते हो छोरा छोरी की, जिसे चाय पी लोगे, आप व्यसन करती है औरों को भी सिखाती है। ये माताएं होती है ना, ये आदमी बच्चों को सुधार देती है और बिगाड़ भी देती है। जितने अच्छे अच्छे संत महात्मा हुए हैं, आप दृष्टि के दागो प्राय करके जिनकी माताएं अच्छी हुई है, माँ के कारण से बालक के संस्कार अच्छे पड़ते हैं। सुना है मैंने, हमारी माँ ऐसे करती, हमारी दादी माँ के साथ हम जाया करते, सत्संग में ऐसे करते थे, तो बच्चों के संस्कार पड़ते हैं बड़े अच्छे अच्छे। श्री जयदयाल जी ने कहा कि मैं रतनगढ़ में रहता था, उनका ननिहाल था नरसंगढ़, गांव है चूरू, तो नानी माँ है, मामी हमारी जाती, तो हम जाते थे भक्तदास जी महाराज के सत्संग में, तो वे सुनते, हम जाते वो सुनते, इधर उधर उसमें झाड़ी लगी हुई थी, बेर होते तो हम जाकर बेर खाते, बच्चे तो ठहरे उसे सचू को सुने, बेर खाया करते, बेर खा रहा जाए जब कह चल चल अब मत चल, तो भी संत देख रहे थे, ले जाओ भाई बच्चे कहते ले जाओ जाओ जाओ, तो पटा कर दे देखो वहाँ आने आने की तुम हल्ला मत करना, नहीं तो नाथ जी महाराज वहाँ ठहरने दे देंगे कि बालक कैसे जाओ, तो पटा कर ले जाती, चलो तुम वहाँ रहेंगे मत करना, तुम ही कहते चलो पढ़ो चलो। ऐसे बच्चों के संस्कार पढ़ते हैं, तो सत्संग के संस्कार, संतों के दर्शनों के संस्कार बहुत विचित्र पढ़ते हैं, जिससे वे अच्छे हो जाए, परंतु उनको ये नशेली चीजें खिला खिला करके उनका अंतःकरण खराब कर देती हो, बुरे व्यसन उनमें आ जाते हैं। जितने दोषी होते हैं माँ बाप की कुछ स्तर से, बालकों के बड़े खराब संस्कार छोटी छोटी अवस्था में व्यभिचार के दोष के पाप लगे होते हैं, आदत पड़ जाती है। बच्चों को देख करके माँ पिता माँ बाप सावधान नहीं रहते, बेटे बालक क्या समझे, अरे बिना समझे नहीं गर्भवास में असर पड़ते हैं, चक्र व्यूह वेदन करने का वो विद्या दी थी, तो सुभद्रा के गर्भ में था अभिमन्यु, तो वो सीख गया, गर्भ में सीख गया, फिर बाहर आ गया चक्र व्यूह वेदन करने के लिए भेजा उसको, तो उसने कहा कि मैं सीखा हूँ, तो माँ के पेट में बैठे बैठे उनके वेदन करने की बात तो सीख ली, पीछे निकलने की बात माँ को नींद आ गई, नींद आ जाने से मैं सुन नहीं सका, कितनी विचित्र बात है। फिर वो मारा गया चक्रव्यूह में, तो वो विद्या अधूरी रह गई, तो माँ के पेट में रहते हुए विद्या सीखते हैं बालक, तो उनकी गर्भवती बहन माताएं हो, आपकी बहन बेटी हो, तो उनको अच्छी अच्छी बातें सुनाओ, पारमार्थिक जिनकी बालक अच्छा बने अगाड़ी, अच्छी अच्छी माताएं हुई उनके बालक बड़े अच्छे हुए हैं, उनकी आप निगाह करके देखो, जो अच्छे संत हैं अच्छे महात्मा हैं निगाह कर देखो, तो उनकी माताएं बड़ी श्रेष्ठ निकलेगी आपको, बहुत विचित्र थी वे अच्छी। इन वास्ते माँ पर पूत पिता पर घोड़ा, बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, माँ पर पूत पूत माँ के अनुसार है, अपने कहावत है मारवाड़ी के नर नांदाणे जाए, नांदाणे के अनुसार हुए उसकी प्रकृति स्वभाव, माँ का पेट में रहता है फिर दूध पीता है, फिर बोलना चलना खाना पीना सब माँ सिखाती है, पहला गुरु माँ माना, सबसे पहला गुरु माँ है। खाना नहीं आता, भोजन करना नहीं आता, चलना फिरना नहीं आता, बोलना नहीं आता, बैठना वही लुट जाएगा, तो वो कपड़ा देकर बैठना सिखाती है, बैठना माँ सिखाती है, चलना माँ सिखाती है, बोलना माँ सिखाती है, खाना पीना माँ सिखाती है, ये माँ पहला गुरु है। अरे ये अंतर गजब कर दे, जो चाय सिखा दे नशा सिखा दे छोरा छोरी को, बेचारे उम्र भर दुख पाएंगे, तो अगर ये परलोक में इनका पतन होगा, वो पाप माताओं को लगेगा, क्यों माँ ने सिखाया। ये एक छोरा था उसने चोरी के अपराध में बहुत बार करी, फिर बना गया फिर करी, तो कहते इन पास चलाओ, ये मानता है नहीं, फांसी चलो, फांसी का हुक्म हुआ, तो कहा क्या चाहता है कि मैं माँ से मिल लूँ, कहे भाई फांसी हो रही मिला दो। एक बात ऐसी होती है, अब तो है कि नहीं पता, पहले से रिवाज थी, किसके मन में कोई बात हुए तो कह दो भाई फांसी जा रहा मर रहा है जाया, माँ को बुलाया, ये माँ आई साहब, माँ के कान में कहूँगा, तो कान आया, माँ ने कान गया, सुना दे भाई खा गए कान को, दादा तोड़ दिया कान, खरे दोस्तों तेरे तो फांसी हो रही है, मान का काम क्यों तोड़ दिया कि मैं पेंसिल लाया चुरा करके, मान गया ठीक है बेटा और दिया और लानी है, ऐसे कि मैं चोरी सीख गया, उस चोरी की आदत से आज फांसी हो रही है मेरे को, ये माँ के कान में सुनाया इस नदिया जिससे मेरी फांसी हो रही है, इस आज कान खा गया हुआ, मुझे इनसे शिक्षा मिली है। तो माँ की शिक्षा मिलती है उससे बच्चा बनता है, तो जैसा बच्चा बच्ची होंगे कैसे होंगे, माँ की शिक्षा है। आचरणों से आचरती श्रेष्ठ सहित प्रमाण गुरु से वो करता है वैसे बालक करते हैं। बड़े बीरा काढ़ी कार रसोई बीरा लारू लार, बड़ा बीरा करेगा वही छोटे भाई वैसे ही करेंगे। तो इस वास्ते माताओं आप कृपा करो, आप बड़ी पूजनीय हो, बड़ी आदरणीय हो, माँ हो, माँ का दर्जा बड़ा ऊंचा माना है। साधु होने पर घर वाले नमस्कार करे साधु को, पर माँ सामने आ जाए तो लंबा प्रदंडोत करो माँ, साधु होने पर भी वो गृहस्थाश्रम में है परंतु माँ है मेरा जन्म देने वाली, जैसे कल्याण हो जाए वो शरीर इसने दिया है, पेट में रखा है, दूध पिलाया है, गोद में खिलाया है, बड़ा किया है, माँ का ऋण कभी नहीं उतर सकता। माँ का ऋण कोई उतारना चाहे बूढ़ी माँ सेवा करो तो आप थक जाओगे। ये भाई हमारे हैं, माँ ज्यादा बीमार रह जाए तो अपनी बहन को बुलाते हैं, बहू वो तो वो करे नहीं तो बहन को बुलाते हैं, बहन आओ भाई मेरी माँ बीमार है। क्यों, धन के मालिक तो आप बन जाओ, गहना रुपया जिसके मालिक तो आप बन जाओ, अरे सेवा बहन करो, क्यों सेवा को क्या मिलता है, मालिक बनने के तो तैयार, सेवा माँ की कर नहीं सकते, जिस माँ ने पालन किया है आपका उसी सेवा नहीं कर सकते, इतना है। और वही माए जब महाराज पतन करने की बात वो चोरी सिखा दी तो फांसी चढ़ी उसकी, इस तरह से आप नशीले बातें नशीला उनको बना करके बनाते हो, आप खुद नशा करते हो वही बालक सीख जाते हैं, आप जो करते हैं वो सीख जाते हैं बच्चे। संध्या करने वाले जिन घरों में होते हैं वो बच्चे भी यूं बैठ करके पानी देख रही उतरेंगे, क्या मंत्र पढ़ते हैं क्या करते हैं पता नहीं, बच्चे ऐसा करते हैं क्योंकि वो देखते हैं अपने बड़े भाई है, पिता है, चाचा है, ताऊ है, वे करते हैं संध्या तो वे भी संध्या करते हैं, वे पाठ पूजन वही करते हैं, ठाकुर जी का पूजन करते हैं तो वे ठाकुर जी का पूजन करते हैं, कर्मरा अड़ जाते हैं कि ठाकुर जी का पूजन मैं करूँगा, मैं भोग लगाऊंगा, मैं चंदन चढ़ाऊंगा, छोटे छोटे बच्चे क्योंकि वो सुनते ही रखाते हैं मेरे ठाकुर जी पूजन करें तो देख करके सुन करके सीखते हैं। ये शिक्षा दो तरह से, देखने से शिक्षा होती है या सुनने से होती है, इस वास्ते काव्य भी दो तरह का बनाया गया है, नाटक आदि देखने का बताया गया है, वो देख करके शिक्षा हो जाए। ऐसे भगवान श्री राम अपना आचरण करके शिक्षा बताते हैं कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए घर वालों के साथ, कैसा करना चाहिए, के कई जैसी माँ बिना कसूर जंगल में निकाल दे, पर के कई आदर पहले माता के कई से मिले पीछे दूसरों से मिले, कौशल्या माँ से पीछे मिले, पहले के कई माँ से मिले, के कई माँ के गोदी में खेले हैं, भरत जी के साथ बहुत स्नेह था राम जी का, इस वजह भरत जी के साथ रहते थे, वहीं खाना पीना अपना खेल कूद करते थे, भरत जी के साथ बहुत स्नेह था बचपन में, तो ऐसी के कई माँ थी। के कई ने कहा है कि मैंने परीक्षा करके देखा है कि मेरा आदर कौशल्या से अधिक करता है राम, कौशल्या माँ से अधिक मेरा है, ये तो माँ पूजनीय है ही, तो कौशल्या माँ है, सुमित्रा माँ है, केकई माँ है, इन माँ का कितना आदर करते थे राम जी। और केकई ने खुद कहा है कि विधाता से कहती हूँ कि मेरा कहीं जन्म हो तो महाराज ओ सी राम सी पोत पोतो हो, बेटा तो मेरा राम होए और बहू मेरी सीता होए। सीता जब आई है ब्याह करके तो सबसे बढ़िया महल था केकई का, वो मुख दिखाई में महाराज केकई ने महल दिया है, ये बेटा और तेरे को दिया है, तो बहू को रहने के लिए अपना महल दिया केकई ने, इतना स्नेह था उसका, प्रेम था, वो तो भगवान की इच्छा ही वनवास में जाना था, असुरों का नाश करना था, पृथ्वी का भार उतारना था, इस वास्ते वनवास की लीला हुई, पर केकई माँ का स्नेह कम नहीं था, बहुत स्नेह था राम जी पर, राम जी का भी स्नेह आदर माता केकई का कुछ दिन से कम नहीं था। वनवास में आए तो पहली माता केकई से मिले, केकई के जाकर शरणों में गिरे हैं, उनसे आज्ञा मांगी, पीछे दूसरी माताओं से मिले हैं। तो माताएं इतनी रक्षा करने वाली, शिक्षा देने वाली, उद्धार करने वाली है, वे पसंद करने वाली बन जाते हो, नशा सिखा दे, बालकों को खराब खराब चीजें सिखा देती हो, तो कृपा करो बालकों को ऐसे नशीली मत चलो। पर वो कब होगा, आप नहीं करोगे तो होगा, आप करोगे तो बच्चा रोने लग जाएगा, बिना तू तो पीती है, मेरे को नहीं पीने। तो आप सब ठीक बनोगे तो अच्छा होगा। माताओं को ठीक बनने से संतान अच्छी होगी, मास्टर अच्छा होने से पाठशाला विद्यार्थी अच्छे होंगे, उपदेश देने वाले संत महात्मा अच्छे होंगे तो दुनिया अच्छी होगी। जहाँ जहाँ अच्छे संत महात्मा हुए हैं उनके संग करने वाली जनता में बहुत विलक्षणता आ जाती है, वहाँ एक जागृति आ जाती है, उत्तम उत्तम आचरण आ जाते हैं। तो ये अगर बिगड़ जाए तो सब बिगड़ जाए। रेलगाड़ी है, सैकड़ों आदमी रेल में होते हैं, तो ड्राइवर ठीक होता है तो ढंग से ले जाता है, सब जागते रहे, ड्राइवर सो जाए तो महाराज कोई एक्सीडेंट होगा, क्या दशा होगी, सब सब मारे जाएंगे, बेचारे मर जाएंगे। ऐसे ही है, माँ है, मास्टर है, अध्यापक है, गुरु है, संत है, ब्राह्मण है, जो सबके ड्राइवर है, ये बिगड़ जाएंगे तो सब दुनिया बिगड़ जाएगी, सब दुनिया का नाश हो जाएगा। इस वास्ते पूज्य संतों, आप लोग ब्राह्मण ये सावधान हो, ऐसे बहनों माताओं से कहना है कि आप माँ हो, आपका दर्जा मामूली नहीं है, सबसे ऊंचा दर्जा। सीताराम, राधे श्याम, गौरी शंकर, पहले माँ का नाम लेते हैं, लक्ष्मी नारायण पहले माँ का नाम लेते हैं, माँ का दर्जा सबसे ऊंचा है। मातृदेव भव, पितृदेव भव, आचार्य देव भव, सबसे पहले मातृदेव बसाया है, त्वमेव माता से पिता त्वमेव, पहले माँ का नाम लिया है। ऐसे आदरणीय माँ, और वही बुरे बुरे व्यसन सिखा दे, बुरी बुरी आदत सिखा दे बच्चों को, तो उनकी क्या दशा होती है, नरकों में जाएंगे, तो ये माँ को दोष लगेगा। पर कई माता तो आज गर्भ नाश कर देती है, बस गोली खा कर, मेरे को मिली है जवान जवान छोरिया, वे कहते हैं हम तो गोली खा लेते हैं, बस गर्भ ठहरे ही नहीं, ऐसी बात करें, पहले से ही सत्यानाश कर रही है, वंश का नाश कर रही है, अपनी संख्या हिंदुओं की थोड़ी, फिर भी थोड़ी कर रहे हैं, नष्ट हो जावे। छोरियां हो तो गर्भपात कर दो छोरी, क्यों छोरी से अगाड़ी वंश बढ़ेगा, वो रह जाएगी तो वंश की रक्षा हो जाएगी, उनका नाश करो, गर्भपात कर दो, छोरा ज्यादा हो जाए ठीक है, कौन पाले, थाने पालने में दोष है। अरे बच्चे के पालने पर तो माँ महाराज खुश हो जाती है, माँ के बच्चों की सेवा करो माँ खुश हो जाए, भगवान के भक्तों की सेवा करो भगवान खुश हो जाए, तो बच्चों के पालन करने से माँ बाप खुश होते हैं। आज माँ बच्चों का भी नाश करने की सिद्ध हुई, वंश का नाश करने की दिख गई, और जो गोदी मार पड़े उनके छोरा छोरियों को बुरे बुरे व्यसन सिखा करके, बुरी बुरी बातें सिखा करके, और महान पतन कर रही है, बड़े भारी पाप कर रही है। भाइयों से बहनों से सबसे कहना है कि ये नशे की बात छोड़ो, चाय कुकन आदि का त्याग करो, नोखे की बात है। मैंने कई वर्ष पहले चाय के लिए निषेध किया, घरों में चाय बनती बंद हो गई, महाराज माइयाँ बड़ी राजी हुई, दिन भर धुआं धुकता, सुबह शाम रसोई बनानी पड़े, दिन में कोई आदमी चाय बनाओ, हमारे बहुत ठीक हुआ, शांति हो गई, अब दिन भर हम चूल्हा नहीं बालना पड़ता, ऐसे उन्होंने कहा था। तो ऐसे महाराज इनको छोड़ो, बुरे बुरे व्यसन है, इनका त्याग करो, जिसमें आपको और आपके संतान को सबको ही सुख होगा, आराम होगा, बुरे विषयों से, बुरे आदतों से बच जाओगे। तो माताओं से कहना है, भाइयों से कहना है, छोड़ो, अभी जो पीना कर शुरू कर दिया तो अब भी छोड़ो, और नहीं किया हुए कृपा करके ऐसे व्यसन से और मत करना। अंदर जड़ दो के बिना तो प्राण नहीं रहते, केवल अन्न से नहीं रहते, केवल पानी से नहीं रहते, ये दो तो सेवन करनी पड़ती है, शुद्ध सेवन से सेवन करो, नशा पता नहीं करने से कोई बाधा नहीं पड़ती, कोई ऐसे उसके जीने में कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी तरह से जीते हैं, और व्यसन करने से कोई विशेष बल आ जाए ऐसी बात नहीं है, शरीर निर्बल होगा। तो नशेली चीजों का ऐसे सेवन करना, महान महान पतन करना है, ऐसा ना करें, ये प्रार्थना है। नारायण नारायण नारायण।
श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज 7 सितंबर 1990 प्रातः 5 बजे बीकानेर।
नारायण 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 नारायण। मुख्य तो उद्देश्य होना चाहिए अपना, अपने इस उम्र में क्या करना है, इस जन्म लेकर क्या करना है, अपने मनुष्य बनकर क्या करना है, ये उद्देश्य है ना। प्राय आदमी कैसा रहता है कि धन कमाओ और भोग भोगो, और अब वो परमार्थ उनसे कैसे हो गई। उद्देश्य लक्ष्य ही जब धन कमाने का है, भोग भोगने का है, तो परमात्मा से तुम्हें प्राप्ति कैसे होगी भाई, लक्ष्य ही नहीं है। इसमें विचार करो भाई, ये भोग है सुख है तो पशु पक्षी आदि भी मिल जाता है, वहीं भी मिलेगा, इसका तुम्हें अभाव नहीं रहेगा। कुत्ता है, गधा है, ऊंट है, सुअर है, इनको भी मिलता है। उसे सुख को अपने देते हैं तो मनुष्य जन्म की क्या विशेषता हुई, मनुष्य जन्म कैसे सफल हुआ, ये स्वयं विचार करने का है। अपना एक ध्येय बनना चाहिए, लक्ष्य के हमें इस उम्र में ये काम करना है। तेरे भावे जो करो भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठ के अपनो भुवन बुहार। दुनिया कुछ भी करे कुछ भी ना करे उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें तो अपने कल्याण से मतलब है ना। वो कल्याण अपना करो, औरों का करो, सबका करो, जितना हो सके करो, वो होना चाहिए ना। लौकिक में तो ये बात है कि अपने लाभ हो जाएगा उससे दूसरों को लाभ हो जाएगा, ये बात है नहीं। हमारे धन आ जाएगा तो क्या फायदा होगा, दुनिया के नुकसान ही होगा। दुनिया में जितना धन है सीमित, उसमें से हमारे को मिलेगा तो उसमें तो घाटा ही पड़ेगा दुनिया के। क्यों सर,
नई बात
सुनो, वो सीमित वस्तु है उनमें हम लेंगे तो उनमें लेंगे तो कमी आवेगी दुनिया के। हम अगर व्यक्तिगत संग्रह नहीं करते हैं तो वो तो दुनिया का ही काम आएगा ना। तो लौकिक उन्नति में तो अपना धन कमावे ये है, पर वास्तव में इसमें दुनिया का नुकसान है। और पारमार्थिक उन्नति हम करते हैं तो इसमें दुनिया का हित है, तो दूसरा किसका नुकसान किसका बताओ। औरों के भी उद्धार में उन्नति उन्नति में सहायक होंगे कि नहीं। हमने इतना आध्यात्मिक लाभ कर लिया है, उतना लाभ दुनिया को ही होगा कि नहीं होगा, हमारे संपर्क से, दर्शन से, भाषण से, चिंतन से, व्यवहार से, हित ही होगा दुनिया का, क्या नुकसान क्या होगा। और भोगी और संग्रह से नुकसान ही होगा, फायदा क्या होगा, संग उसका खराबी होगा। उनका दर्शन भाषण चिंतन भी पतन करने वाले ही होगा, ऐसे ही तो घटा किया है, ऐसे ही घटा ही होगा भाई। रोई ते प्राप्त अंतिम वह सर्वभूत हित रहता, तो हित तो कैसे होगा, सबका हित होगा हम त्याग से, और हमारे व्यक्ति के द्वारा ही लाभ होगा तो हम सांसारिक वस्तु नहीं चाहेंगे, इससे ही होगा। सांसारिक वस्तु चाहना से दुनिया का हित कैसे होगा। तो स्वार्थ और परमार्थ है दोनों, तो पारमार्थिक बातों में लगने में सबका हित होगा। परमार्थ स्वार्थ है सगरो सगड़ा ही ठीक है, इसमें सभी होगा। और लौकिक में बसने में तो ईर्ष्या भी द्वेष होता, आपस में खटपटी होगी। जितना ही आध्यात्मिक लाभ होगा उतना दुनिया को सबके कल्याण होगा, त्रिलोकी में कल्याण होगा। ढाई अरब आदमी है उसमें एक आदमी को भी शांति मिलेगी तो उसमें से एक अंश को तो लाभ हुआ ना। उसने भोगों का त्याग किया, संग्रह का त्याग किया, तो इससे लाभ ही होगा दुनिया को, हित होगा ना, और बाधा नहीं पड़ेगी, सहूलियत होगी। कैसा
जी?
तो सब तरह का कल्याण है इसमें, सबका कल्याण है, सबका हित है, किसी का भी अहित नहीं है। कोई समझे ना समझे बात एक अलग है। क्यों सा और परमों की बात रही हो क्या है? मैडम आप लोगों की दृष्टि है कि नहीं? बात है दृष्टि है तो इसको विचार करो, हमारा और दुनिया का हित किस बात में है, अभी और परिणाम में हित किस बात में है। एक सुख होता है, एक हित होता है, तो सुख इतना दामी चीज नहीं है, इतना ही है। भगवान ही कहता आज हमारा ताश हित हो ही, काम तो हमारा पर हित उसका हो। कितनी विशिष्ट बात है, बैर रखने वाला भी हित हो। अरे अनुभव की नाम अहित नहीं किया किसी का भी। तो श्रेष्ठ पुरुष हुए हैं उनके द्वारा दुनिया का हित होता है, स्वाभाविक होता है, बिना किए होता है, स्वाभाविक उनकी हवा से ही हित होता है दुनिया का, स्वाभाविक। तो कितनी विचित्र बात है, उपकार करोगे आप कितना उपकार कर रहोगे, रुपयों के द्वारा आप कितना उपकार करोगे, नहीं कर सकते। पदार्थों के द्वारा कितना करोगे, ये जितनी स्थूल वस्तु है उतनी वो छोटी है, जितनी सूक्ष्म है वो व्यापक है, जितनी सूक्ष्म होगी। और परमात्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म, अणु अणी आन मरु मातो मही आन है, तो अणु से ही अणी आन है, अत्यंत अणु है। तो इसमें स्थित होने से बहुत व्यापक लाभ होता है, किसी विशेष बात है। हमारा और दुनिया का कितना उपकार होगा, उद्देश्य केवल ये हो जाए कि भी हमारे आध्यात्मिक उन्नति हो, एक उद्देश्य होने से सबको लाभ होगा। कितनी विचित्र बात है, एकदम सच्ची बात है। अपना स्वार्थ भी सिद्ध होगा, और स्वार्थ नहीं रखने से परमार्थ सिद्ध होगा, हमारा दूसरों का भी परमार्थ सिद्ध होगा, और हमारे स्वार्थ में भी बाधा नहीं पड़ेगी, किंतु और सहूलियत होगी, सुगमता होगी।
जितना हम संग्रह करते हैं वो दूसरे की कमी करते हैं,
कमी करते हैं और क्या करते हैं। एक बात आई मन में कि जैसे चौमासिक कथा होती है, तो चौमासिक कथा होती है उसमें हम भेंट लेते हैं, जितनी हम भेंट नहीं लेंगे उनके घर में ही रही अपनी कथा करी, और कथा में अंत में भेंट करते हैं, और भेंट देते तो वो हमारे आते ही, और नहीं ली तो तुम्हारे घर में ही रही, नुकसान क्या हुआ, फायदा ही हुआ ना। और पारमार्थिक बातें सुनी उसमें भी कोई कमी नहीं आई, कथा में कमी नहीं आई, तो लोगों की दोनों तरह का लाभ हुआ नहीं। और बताओ और किस तरह हुआ, लोगों को दोनों लाभ कैसे हुआ।
कथा हो गई, भगवान की चर्चा हो गई, तो पारमार्थिक लाभ हो गया,
इस पारमार्थिक लाभ हुआ,
पैसा उनका उनके पास ही रहा,
उनके पर खर्च हुआ नहीं होगा। तो इतना उपकार कौन कर सकता है, पैसों के द्वारा कर सकते हैं, वस्तुओं के द्वारा कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि कल्याण को तो तुम्हारे घर हमारे क्या फायदा, सब तेरे का फायदा है। कलकत्ते की बात है, मैदान में सत्संग करते थे, सुनाते थे, तो हम कहीं चले गए तो पीछे एक ब्राह्मण सुनाने लगा, वो भेंट लेने लगा। तो उसने कहा कि भेंट लेते हैं उसमें तुम्हारा पुण्य होगा कि नहीं, अब हम नहीं रहे तो तुम्हारे क्या फायदा हुआ। स्वामी जी लेते नहीं तो स्वामी जी अच्छे हो गए, असर नहीं लिया, पर हमारा क्या फायदा हुआ। हमारे पैसे सुबह लग जाते, भेज देते तो हमारे कल्याण होता, हमारा हित होता, और भेज नहीं लेने से हमारा वो तो हित बंद ही हो गया ना। अरे क्या उत्तर इसका, हमारा उपकार होता है नहीं, हमारे पैसे शुभ काम में लग जाते। तो इस वास्ते हम भेंट देते हैं वो ठीक है, और नहीं लेते वो ठीक नहीं है। मुझे वो सुनाया लोगों ने,
ये बात सुनी नहीं कभी,
हमारी बीती ऐसी बात
नहीं। ये ब्राह्मण वाली बात, कलकत्ते वाली बात, आपकी कथा करने के बाद किसी ब्राह्मण ने ऐसा कहा?
मैं जब हमने मैदान में सत्संग करा था ना, वहाँ जब मैं वहाँ नहीं रहा तो लोग तो आते ही वहाँ, तो लोग तो कथा करने लगे, कथा करने के लिए भीड़ लेने लगे, पैसा लेने लगे लोगों से। तो उन्होंने ये बात बताई कि हम पैसा लेते हैं तो तुम्हारा दान पुण्य बढ़ता है, पैसे स्वामी जी नहीं लेते तो स्वामी जी अच्छे त्यागी त्यागी, पर हमारा क्या फायदा, लोगों का फायदा क्या हुआ। हम भेंट लेते हैं तो तुम्हारा दान पुण्य होगा तो तुम्हारा लाभ होगा कि नहीं, समझा? तो तुम्हारा लाभ है इसमें, हमारा हम भेंट लेते हैं इसमें नहीं लेने से क्या लाभ है तुम्हारे को, बताओ उसे उत्तर क्या है। ठीक है भाई, हमारा हित है, पैसा नहीं ले हमारे क्या हित हुआ, हमारे तो पैसा लगे ही नहीं, हमारे पुण्य हुआ ही नहीं, उत्तर बताओ इसका।
वो आपने बम्बई में कहा था एक बार, पैसा को मैं तुम्हारे मन में धर्म का महत्व बढ़ाने आया हूँ, पैसे का महत्व बढ़ाने नहीं आया हूँ, धर्म का महत्व बढ़ाने आया हूँ।
ये मैंने कहा बम्बई में कहा था, बम्बई में कहा आप गायों के लिए अगर ऐसा करो धनी आदमी ही नहीं, उत्तर बताओ इसका।
वो आपने बम्बई में कहा था एक बार, पैसा को मैं तुम्हारे मन में धर्म का महत्व बढ़ाने आया हूँ, पैसे का महत्व बढ़ाने नहीं आया हूँ, धर्म का महत्व बढ़ाने आया हूँ।
ये मैंने कहा बम्बई में कहा था, बम्बई में कहा आप गायों के लिए अगर ऐसा करो धनी आदमी ही नहीं, उत्तर बताओ इसका।
वो आपने बम्बई में कहा था मेरे बार, पैसा तुम्हारे मन में धर्म का महत्व बढ़ाने आया हूँ, पैसे का महत्व पैसे तो बढ़ाने नहीं आया, उनका महत्व बढ़ाया हूँ, धर्म का
मैंने कहा बम्बई में कहा था, बम्बई में कहा आप गायों के लिए अगर ऐसा करो धनी आदमी ही नहीं, उत्तर बताओ इसका।
वो आपने बताया था मुंबई में मेरे बार, पैसा तुम्हारे मन में धर्म का महत्व बढ़ाने आया हूँ, पैसे का महत्व बढ़ा, पैसे में नहीं आया, उनका महत्व बढ़ाने
का मुंबई में कहा था, मुंबई में कहा आप गायों के लिए अगर ऐसा करो धनी आदमी ही नहीं, उत्तर बताओ इसका।
वो आपने बताया था मैं मुंबई में एक बार, पैसा तुम्हारे मन में धर्म का बढ़ाने आया हूँ, पैसे का मैं तो बढ़ा, पैसे में नहीं आया, उनका मैं तो बढ़ाया हूँ, धर्म आया हूँ।
मुंबई में कहा था, मैंने कहा मुंबई में कहा आप ये आयों के लिए ऐसा आगे करो धनी आदमी ही नहीं, उत्तर बताओ इसका।
वो आपने बताया था मैं मुंबई में एक बार, पैसा तुम्हारे मन में धर्म का बढ़ाने आया हूँ, पैसे का मैं तो बढ़ा, पैसे का मैंने नहीं आया,
ये मैं
तो बढ़ाया हूँ, धर्म आया हूँ।
मुंबई में कहा था, मैंने कहा आप मुंबई में कहा ये आयों के लिए ऐसा आगे करो धनी आदमी ही नहीं, उत्तर बताओ इसका।
वो आपने बताया था मैं मुंबई में एक बार, पैसा तुम्हारे मन में तो मैं तो बढ़ाने धर्म का मैं पैसे का मैं
आप गंगे में ये कहा गायों के लिए ऐसा करो अगर धनी आदमी को ही नहीं पुत्र बताओ इसका।
वो आपने बताया था कि मैं मुंबई में पर पैसा तुम्हारे में तुम्हें में तुम्हारे आया हूँ पर धर्म का मैं से तो बड़ा धर्म का मैं पैसे नहीं आया
तो बड़ा नहीं हूँ धर्म मैं बताया था आप गंगे में ये कहा आयों के लिए ऐसा करो धनी अगर आदमी
आपने बताया था की मैं मुंबई में पर पैसा तुम्हारे मन में तुड़ाने आया हूँ धर्म का मैं पैसे नहीं आया तुड़ाने आया हूँ धर्म
आप मुंबई में ये कहा आयो के लिए ऐसा करो अगर आदमी को ही नहीं पुत्र बताओ इसका।
कहा था आपने मुंबई में पर पैसा तुम्हारे मन में तुड़ाने आया हूँ धर्म का मैं तो बुढ़ा से उनका मैं पैसे नहीं आया तो बुढ़ाने आया हूँ धर्म
आप मुंबई में ये कहा आयो के लिए ऐसा करो धनी आदमी अगर ही नहीं पुत्र बताओ इसका।
कहा था आपने मुंबई में पर पैसा तुम्हारे मन में तुड़ाने आया हूँ धर्म का मैं तो बुढ़ा से उनका मैं पैसे नहीं आया तो बुढ़ाने आया हूँ धर्म
आप मुंबई में ये कहा आयो के लिए ऐसा करो धनी आदमी अगर ही नहीं पुत्र बताओ इसका।
कहा था मैं आपने मुंबई में पर पैसा तुम्हारे मन में तुड़ाने आया हूँ धर्म का मैं तो बुढ़ा से उनका मैं पैसे नहीं आया तो बुढ़ाने आया हूँ धर्म
आप मुंबई में ये कहा आयो के लिए ऐसा करो धनी आदमी अगर ही नहीं पुत्र बताओ इसका।
कहा था मैं आपने मुंबई में पर पैसा तुम्हारे मन में उड़ाने आया हूँ धर्म का मैं तो बुढ़ा से उनका मैं पैसे नहीं आया तो उड़ाने आया हूँ धर्म
आप मुंबई में ये कहा आयो के लिए ऐसा करो
आपने मुंबई में पैसा मैं तुम्हारे में तुड़ाने आया हूँ।